مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل
السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل ہمارا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے پاکستان میں ریڈیو پر میڈیم 972 پر اور انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر اور ہمارے فیس بک پر براہ راست جس کا لنک ہے facebook.com/voa اردو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی نوجوانوں میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ایک انتہائی مہلک نشے آئس پر اس کے اثرات علامات علاج اور روک تھام پر گفتگو ہوگی اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ماہرین کا ایک پینل موجود ہے جس میں شریک ہیں ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کی اسسٹنٹ پروفیسر اور اقوام متحدہ کے ڈرگ اینڈ کرائم آفس کے ایک نیشنل ٹرینر ڈاکٹر کھین پال داس کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کلینکل سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ اور اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی شاہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان میں اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے سدے باب سے متعلق پروجیکٹ کولمبو پلان کے ایک نیشنل ٹرینر اور گورنمنٹ کالج سرگودا کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور سرگودا میں منشیات کے عادی افراد نفسیاتی مریضوں کے علاج کے ایک مرکز عزم کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر جواد محمد شجاعت اور ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے علاج اور بحالی کے مرکز کے سابق پروگرام مینیجر اور منشیات کے علاج اور بحالی کے اسپتال سائیکیٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور کلینیکل سائیکالوجسٹ اور ایک انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ ایڈکشن پروفیشنل فرمان علی تو ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گفتگو میں شامل کریں گے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کلینیکل سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ اور اپلائیڈ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی شاہ سے السلام علیکم ڈاکٹر اصغر علی شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا تو سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ آئس کا نشہ ہے کیا اور یہ نشہ پاکستانی نوجوانوں میں اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے
یہ آئس کا جو نشہ ہے یہ ایک ایفیڈرین سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے اور ایک پورن کی شکل میں یہ وجود ہوتا ہے اور 18 سے 25 سال کے جوان جو ہے اس کو ایز اے اسٹیمولنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں یعنی یہ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مینٹل انرجی اور فزیکل انرجی اس سے بڑھ جاتی ہے
جی
اور اس کا استعمال کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس کو ایک شیشے کی بوتل میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے اس سے تھوڑا سا سموک پیدا ہوتا ہے اور ایک چھوٹے سے پائپ کے ذریعے اس کو سنف کیا جاتا ہے اس سموک کو اور یہ اویلیبل کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان میں اویلیبل ہے اور نوجوانوں میں یہ کافی زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کے کچھ سائیکیٹرک اثرات بھی دیکھنے میں آتے ہیں جیسے کوئی اس میں پیرالائز فیلنگز آ جاتی ہیں تھوڑا سا اس میں کوئی سوئسائڈل کا بھی ایویڈنسز ملے ہیں کہ کچھ نوجوانوں میں تھوڑا سا اس طرح کے ٹینڈنسیز اس طرح کے ٹرینڈ بھی پائے جاتے ہیں دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سوئسائڈ کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ رہا ہے کچھ لوگ اس کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو اس کے نشے کے عادی ہیں شیشے کے
جی جی
ان نوجوانوں میں تھوڑا سا خودکشی کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے
ٹھیک
اور اس کی چونکہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ زیادہ سائیکولوجیکل ہے فزیکل کی نسبت اس لیے تھوڑا سا اس کی ٹریٹمنٹ میں یا اس کی ریبلیٹیشن میں کچھ پرابلمز آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس وقت جتنے بھی نشے کے علاج کے سینٹرز ہیں مراکز ہیں
جی جی
اس میں زیادہ تر جو ماڈل اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کر رہے ہیں ایک فیزیولوجیکل اس پہ بیس کرتے ہیں
یعنی
وہ فزیکل اور ڈیپینڈنسی کو زیادہ تر ایڈریس کر رہے ہیں
بے حد شکریہ ڈاکٹر اصغر علی شاہ صاحب بے حد شکریہ ڈاکٹر اصغر علی شاہ صاحب آپ سے ہم مزید بات بھی کریں گے لیکن ہم شامل کریں گے پروگرام میں ڈاکٹر جواد محمد شجاعت کو السلام علیکم ڈاکٹر محمد جواد محمد شجاعت صاحب आप कुछ तो रोशनी डाल दी इन्होंने असगर साहब ने. हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर खीन पाल दास से हमारा रब्ता हो जाए जो इसके मजीद एस्पेक्ट पर रोशनी डालें. लेकिन आप बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो आइस का जो नशा है उसके इलाज के लिए जो काम हो रहा है वो किस हद तक आप समझते हैं कि मुनासिब है और मजीद कितना काम होना चाहिए और बैन अल-अक़वामी तौर पर जो इदारे हैं वो इस मर्ज की रोकथाम के लिए क्या पाकिस्तान में कुछ कर रहे हैं?
बेसिकली ये जो आइस का नशा है ये कंपैरेटिवली बाकी नशों की नस्बत पाकिस्तान में नया है
जी.
और जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है. इस वक्त इसी साल जनवरी में पिशावर के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने एक 100 बेड्स का हॉस्पिटल जो है आइस रिहैबिलिटेशन के नाम से एस्टेब्लिश किया है और वहाँ पे 100 मरीजों का इलाज हो सकता है. उनको रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. बाकी जहाँ तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ताल्लुक है तो अभी पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हैं वो ट्रीटमेंट सेंटर्स उनके अंदर वो फैसिलिटीज नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोलंबो प्लान आइस इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं कि जो नौजवान हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेन किया जा रहा है और उन्हें आइस के तहत ये जो आइस एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रीडेंशियल प्रोवाइड करती है एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स को. तो वो यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज करवा के उन लोगों को इसमें एक्सपर्ट किया जा रहा है.
बिल्कुल. तो हम आपसे जवाब डॉक्टर जवाद मोहम्मद शजात साहब प्रोग्राम के बाकी हिस्से में मजीद बात भी करेंगे. लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खीन पाल दास कराची से जो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और अकवामे मुत्तहिदा के ड्रग एंड क्राइम ऑफिस के एक नेशनल ट्रेनर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खीन पाल दास. इस वक्त हमारा प्रोग्राम फेसबुक पर जा रहा है और आपसे कुछ 2-3 मिनट के बाद ये हम फेसबुक से हट जाएंगे. तो जल्दी से हमारे फेसबुक के लिसनर्स को बताइए कि इसकी अलामत क्या होती है अगर कोई नशा लेने लगे आइस का तो कैसे पता लगेगा कि वो इस नशे में मुब्तला हो चुका है?
बिल्कुल. सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बात को वजाहत करता चलूँ कि जो आइस है ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं नशे के, उसमें से आइस एक ऐसा नशा है जो कि साइकोस्टिमुलेंट है. साइकोस्टिमुलेंट मतलब कि देखिए जो ब्रेन या दिमाग की जो हमारी एक्टिविटीज है उसको तेज कर देता है. ठीक है. तो ये एक स्टिमुलेंट ग्रुप्स का ताल्लुक रखता है जिसमें लेने से क्या क्या अलामत आई जो आपने बात की वो है मसलन कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाना. ठीक है. और अटेंशन और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा आ जाना और बहुत ज्यादा चालाकी या चुस्ती अंदर आ जाना, अपने आप को बहुत ज्यादा खुश महसूस करना और ज्यादा सेहतमंद महसूस करना. और इसमें एक जो कैफियत ये भी हो जाती है कि हद से ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बातें करना. और कुछ इसके साथ साथ जो अलामत होती हैं जो कि जिस्म में हमारे जो कुछ फंक्शन थे उसको वो डिस्टर्ब करती है, जिसमें से कि बॉडी टेम्परेचर को ये अल्टर कर देती है. ठीक है. बॉडी टेम्परेचर में खासतौर पर आइस लेने के बाद जो है ना हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
अच्छा, तो शदीद सूरतों में क्या सूरत इख्तियार करता है ये मर्ज, ये नशा जो है शदीद सूरतों में क्या हो जाता है?
जी हाँ, शदीद सूरत में जैसे मैंने आपका भी जिक्र किया कि जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं. डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर है, हमारे गुर्दे फेल हो सकते हैं. ठीक है. और इसके अलावा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, ब्रीदिंग आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है. अच्छा, कुछ अलामत ऐसी होती हैं जो कि आप अगर ज़्यादा मकदार में लेंगे नशे को तो उसमें जो है एग्रेसिवनेस या वायलेंस ये बढ़ जाता है, या फिर एक मेंटल कंडीशन होती है जिसको हम साइकोसिस कहते हैं. ठीक है. साइकोसिस में इंसान की सोचों में तब्दील हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिलूजन वगैरह हो जाते हैं, या फिर उनको सेंसरी जो फीलिंग्स हैं हेलुसिनेशंस वगैरह वो चेंज हो जाते हैं, वो होने लगती है.
तो आप ये कह रहे हैं कि इस सूरत में अगर ये नशा बहुत ज्यादा शिद्दत से या एक्सेसिवली इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से नफसियाती अमराज जन्म ले सकते हैं जो बहुत शदीद किस्म के होते हैं और उनका इलाज जाहिर बहुत मुश्किल होता है. इस पर हम मजीद बात करेंगे लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इस वक्त हमारा प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हमारे फेसबुक पेज पर भी नशर हो रहा था. लेकिन अब हम 10 मिनट के बाद अपने फेसबुक के लिसनर से खुदा हाफिज़ कहते हैं, उनसे इजाज़त मांगते हैं. लेकिन हमारा پروگرام ابھی جاری ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ اردو وی او ڈاٹ کام پر جاری ہے, اس پر آپ سن سکتے ہیں, اور ریڈیو پاکستان میں ریڈیو پہ آپ سن سکتے ہیں میڈیم 972 پر. تو فیس بک کے لسنر سے خدا حافظ, اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جس کے بعد ہم گفتگو میں اپنے باقی مہمانوں کو شامل کریں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے, آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کی راؤنڈ ٹیبل ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان میں ایک تیزی سے پھیلتے ہوئے نشے آئس کے بارے میں, جو بڑی تیزی سے خاص طور پر تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اس نشے کے کتنے خطرناک اثرات ہیں, اس پر گفتگو کے لیے ہمارے پاس پورا ماہرین کا ایک پینل موجود ہے جو اس مرض کے علاج میں بھی مصروف ہیں, اس مرض کے کو پریونشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو ابھی گفتگو کی ڈاکٹر کین پال داس نے, جو کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں, تو پہلے انہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم باقی مہمانوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. جی, ڈاکٹر کین پال داس ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں, تو اب کچھ تفصیل سے بتائیے کہ جب یہ نوجوان جو ہیں, بلکہ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ کیوں نوجوانوں میں یہ مرض, کچھ تو انہوں نے بتایا کہ اس لیے ہوتا ہے کہ اویلیبل ہے, دوسرے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہو جائے, ان کا حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کی کنسنٹریشن ٹھیک ہو جاتی ہے, تو اس لیے وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو اس طرف لانے میں کس کا رول زیادہ ہے؟ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں یہ کون پہنچا رہا ہے ان کو ڈرگز, کچھ اندازہ آپ کو؟
بالکل, جیسے کہ آپ اگر مجھ سے جو اس کے سبب کی بات کریں گے یا کاغذ کی بات کریں گے, تو اس میں سے سب سے زیادہ جو ہے اگر اس کی کالج اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگر کسی نے ایک نے لے لیا تو پھر وہ دوسرے کو انوائٹ کرے گا کہ اچھا آپ بھی آ جائیں, تو پھر ایک سرکل اس طرح بن جاتا ہے, تو اس میں مجبوری میں پھر وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو پیئر پریشر از امپورٹنٹ ان دس یوتھ جنریشن, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے.
اچھا, تو اس کے بعد آپ یہ بتائیں, پیئر پریشر آپ کہہ رہے ہیں اس کی اصل وجہ ہوتی ہے, اور پھر اویلیبلٹی بھی ہے کہ مل بھی جاتا ہے, یہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح اویلیبل ہو رہا ہے تعلیمی اداروں میں خاص طور پر, لیکن آپ مزید تفصیل سے بتائیے کہ جب یہ مرض شدید صورت اختیار کرتا ہے, یہ نشہ شدت اختیار کرتا ہے, تو کیا اسکن پر کیا علامت ہوتی ہیں, گھر والوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا یہ جو بچہ ہے یہ نشے میں گرفتار ہو چکا ہے, اور وہ کون سا نشہ, یہ بھی ان کو کیسے پتہ لگے گا؟
بالکل, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ فیملی اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب اسٹارٹ کرتا ہے یا جو بھی یوتھ وغیرہ وہ لینا شروع کر دیتی ہے, تو اس کے اندر کچھ چینجز آ جاتی ہیں, کہ خاص طور پہ ان کی پرسنالٹی کے اندر چینجز آتے ہیں, شخصیت بدل جاتی ہے, پہلے وہ کوائٹ کام یا اپنے کام سے کام رکھنا اس میں رہتا ہے, لیکن اس وقت جو لینے کے بعد وہ بہت زیادہ ہائپر ٹائپ کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی باتوں میں, ان کے انداز میں, ہر طرف میں ایک تیزی آ جاتی ہے, تو وہ چڑچڑاپن, تو یہ ایک تھوڑے الارمنگ سائنس ہوتے ہیں کہ فیملی کو الرٹ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ, اور اس کی ذات کی بات ہے ان کی میٹنگ کس کے ساتھ ہو رہی ہیں, مطلب آڈ آورز میں کہیں باہر جا رہا ہے, آ رہا ہے, گھر لیٹ آ رہا ہے, یہ کچھ طرح کی علامات ہوتی ہیں جو کہ اس کو وہ کرتی ہے.
ٹھیک ہے, اور میڈیکل سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ میڈیکلی آپ نے بتایا کہ اسکن پر کوئی اثر پڑتا ہے, اسکن, آنکھیں,
ہاں, اس میں دیکھیے ہر جسم کے حصے کو یہ افیکٹ کرتی ہیں, اور جس میں سے یہ جو چچڑاپن یا غصہ بہت زیادہ آ جانا, یہ الارمنگ اس کی جو سائنس ہوتی ہیں. اچھا, اگر دوسری بات کی جائے کہ اگر مثال کے طور پہ کچھ اسکن کے اندر وہ جنرل فیشن وغیرہ یا ان کے زخم وغیرہ وہ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے وہ یوز کس طرح کر رہے ہیں. اور دوسرا ایک سمٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر ہم ایک ٹرم کہتے ہیں بروکسزم یہ ہوتی ہے کہ وہ دانتوں کو زور زور سے پیسنا, ٹھیک ہے, اس طرح کے کبھی کبھی کہ دانت ٹوٹ بھی سکتے ہیں اس کے اندر, یہ علامات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ریکلیس یا لائف تھریٹنگ بیہیویئر, اگر مثال کے طور پر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو بہت تیزی سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں, تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ کسی کو ایکسیڈنٹ یا خود کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ہم نے یہ بھی پڑھا, معلوم نہیں یہ درست ہے کہ غلط, کہ وہ 3 دن تک سو رہا ہے اور 3 دن تک جاگ رہا ہے, یہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے؟
جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ الرٹ ہو جاتا ہے, تو اس وقت ان کو نیند کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ویری نیکسٹ ڈے جب آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, تو اس کے اپوزٹ افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک الرٹ ہو جاتے ہیں, پھر دوسرے دن بالکل وہ लेते रहते हैं, नींद का बहुत ज्यादा आना और लेथार्जिक फील करना, डाउन डाउन फील करना, अंतिम वो जब दूसरी एक एपिसोड या डोज ना ले लें उसकी.
ठीक, तो ये भी एक अलामत है कि अगर अगर वालदैन ये देखें कि कोई उनका बच्चा या नौजवान या टीनएजर्स मुसलसल तीन दिन तक जाग रहा है और फिर तीन दिन तक सो रहा है, तो वो वरिड हों और उसके लिए इलाज की तरफ जाएं. तो फिर इलाज की बात कीजिए कि कैसे इलाज इसका, कितने अरसे में मुमकिन है और क्या वो इलाज महंगा है, कहाँ जाएं अगर कोई बच्चा इसका आदि हो जाए तो.
देखिए इलाज के इतने मुख्तलिफ एक मराहिल होते हैं, इसमें इलाज अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है वो तीन किस्म के इलाज, जैसे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रीटमेंट, इनकी जो ना वो इंक्लूड की जाती है.
जी जी.
तो अगर जिस तरह दूसरे नशेवर चीजें होती हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, ओपियाइड्स हो गया, उनके कुछ मेडिसिन जो है एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन हैं कि इसको ट्रीट किया जाए, कि ये दवाई दें, बट इसकी अब तक रिसर्च में डेफिनेटिव कोई ट्रीटमेंट जैसे है कि उसका कोई एंटागोनिस्ट या कोई अल्टरनेटिव वो नहीं है. बट ये है कि उसके जो मेन ट्रीटमेंट जो है वो है साइकोलॉजिकल या जो बिहेवियर इंटरवेंशन, जिसके जरिए जो उनमें से खास तौर पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी वो बहुत ही मुफीद साबित होती है इसके अंदर.
ठीक.
अगर तो ट्रीटमेंट या मेडिसिन की हम बात की जाए
जी जी,
तो इसमें जो हम डिवाइड करते हैं कि मिसाल के तौर ऐसे जो यूथ या जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, कोमॉर्बिड डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, अगर वो है तो फिर उसको हम ट्रीट करते हैं, या फिर अलामती सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं उसकी इलाज किया जाता है, या फिर कुछ केसेस में रिसर्च अभी भी ये शो कर रही है कि उनको एंटी क्रेविंग्स के मतलब उनको तलब ना हो नशे लेने की, उसकी कुछ दवाइयां जो है अभी रिसर्च जो है ना उस पर हुई है तो वो है अवेलेबल. और कुछ एंटा डिपर मिसाल के अगर कोई डिप्रेशन है तो एंटा डिप्रेशन जो कि,
तो यानी इसका इसकी दवाइयां मौजूद हैं और वो, लेकिन कितने अरसे में ट्रीटमेंट हो जाता है ये जरा मुख्तसरन बता दीजिए.
जी ये डिपेंड करता है जैसे कि इसके जो इफेक्ट्स हैं जो है वो 1 वीक तक जो है 5 to 7 days में वो ट्रीटमेंट फिजिकल सिम्टम्स वगैरह वो ट्रीट हो जाते हैं. उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए मे बी 30 to 45 days जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और उसका इम्पैक्ट होता है.
ठीक. तो ये डिपेंड करता है कि मर्ज कितनी शिद्दत इख्तियार कर गया और उसके बाद ही उसका इलाज उतना ही अरसा लेता है जितना कि शिद्दत मर्ज की होती है या नशे की जिसको हम कहेंगे. तो
ज्यादातर जो है लंबे अरसे का इलाज रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी फिर ट्रीट होने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन होने के बाद भी कंटिन्यूसली उनको देखना पड़ता है.
जी.
उनकी कॉपिंग स्टडी
तो आमतौर पर यानी एक साल तक लग जाता है, एक साल तक लग सकता है इसका.
डेफिनेटिव तो कुछ वो नहीं कह सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है.
बेहद शुक्रिया
लगते हैं.
मतलब बेहद शुक्रिया डॉक्टर खीन पाल दास. बेहद शुक्रिया डॉक्टर खीन पाल दास साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. और जैसा कि आपने कहा कि इसमें नफसियाती जो साइकोथेरेपीज़ और दूसरे जो ट्रीटमेंट हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं. तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद के एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इलाज और बहाली के मरकज के जो साबिक प्रोग्राम मैनेजर हैं और अपना उनका एक निजी हॉस्पिटल है साइकेयर, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रोफेशनल हैं, सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल हैं डॉक्टर फरमान अली. फरमान अली साहब अस्सलाम वालेकुम. बेहद शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आप बताइए हमारे सुनने वालों को कि अगर कोई नौजवान या बच्चा इस मर्ज में, इस नशे में मुबतला हो जाए तो उसको रिहैब करने के लिए आपका इदारा क्या कर रहा है और दूसरे इदारे जो इस वक्त मौजूद हैं रिहैब के वो क्या कर रहे हैं.
अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट का मेडिसन है वो तकरीबन एक साल में तकरीबन 20,000 पीपल को एकोमोडेट किया जाता है. इसमें गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाल रही है जिसमें सरे फहरिस्त है वो एंटी नरकोटिक फोर्स के 3 हॉस्पिटल्स है जो कि एक इस्लामाबाद में और एक कराची में और एक क्वेटा में है. बाकी जो है वो तकरीबन 70-80% जो कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से है. जहाँ तक मेरे इदारे की बात है, सेकेड ये 2015 में मैंने इसको एस्टेब्लिश किया था. हमारे पास हर किस्म के पेशेंट्स आ रहे हैं और अब चूंकि बात हो रही है
आईज की, आईज के कितने पेशेंट्स जी और इनमें कितना इजाफा हो गया, कितना इजाफा हुआ.
ये 2011 में तो इसकी जो टोटल नंबर थे वो 16,000 थे जो कि सिर्फ कराची में थे. लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि कोई ड्रग भी जब फॉर्मुलेट होती है तो उसके लिए एक टारगेट ग्रुप का इंतखाब किया जाता है. जैसे कि पहले हेरोइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया तो हेरोइन के लिए भी एक टारगेट ग्रुप टारगेट किया गया. लेकिन बदकिस्मती से जब आइस इंट्रोड्यूस हो गया तो सबसे पहले बिजनेस क्लास को टारगेट किया और बिजनेस क्लास टारगेट के बाद जो है वो जो हमारे तलीमी इदारे हैं उनमें बहुत तेजी से इसकी प्रेवेलेंस हो गई. तो इवन के आज कल हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे जो कि वो 9-10 के बच्चे हैं वो भी जो है वो इस आइस पे आ रहे हैं. हाई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के बच्चे आ रहे हैं. और पेशेंट को फैमिली को तब पता चल जाता है कि उसके बच्चों को इनकी जो बिहेवियर चेंजेस आती हैं उनके मिजाज में तब्दीली आ जाती है, उनके उठने बैठने में
जी. ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई तफसील से, इसके बारे में तो बात हो गई. आप ये बताइए कि इलाज के लिए वालदैन को क्या सहूलियात मयसर हैं, और ये भी सुना है कि जो रिहैब के मराकज हैं उनमें भी जो मनशियात के मरीज हैं नशे में मुबतला होते हैं उनके साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं होता. कुछ बताइए कि क्या हालत क्या है इन इदारों की जो कि रिहैब कर रहे हैं नशे के आदि अफराद के.
ये ऐसा है कि कोई भी इदारा अगर इस फील्ड में काम करना चाहे तो सबसे पहले है कि वो इस काम को सीखें, क्योंकि अपने मिजाज से तो बंदा को कुछ नहीं कर सकता. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है तो आप प्रोफेशनली आप एक पेशेंट को डील कर सकते हैं. पेशेंट लाए जाते हैं वो बहुत गुस्से की हालत में होते हैं, वो बेचैन होते हैं, वो गालम गलौज करते हैं, उनको डिल्यूजन होती हैं, इवन के वो अपने घर में भी शक करके बहुत कुछ ना वो बिगाड़ देते हैं. तो ट्रीटमेंट में जब आ जाते हैं तो जब अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे फजा साहब के उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है और जो कोमॉर्बिड साइकोटिक फीचर्स है उनको भी मेडिसिन दी जाती है ताकि उनकी जो साइकोटिक फीचर्स है वो भी साथ साथ वो मिनिमाइज हो जाए. और लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उनकी जो सपोर्टिंग थेरेपी है, जो साइकोथेरेपी है, जो काउंसलिंग है वो बहुत जरूरी है. ना सिर्फ क्लाइंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि स्पेशली फीमेल इसकी फैमिली के लिए भी, क्योंकि फैमिली को एजुकेट करना बहुत जरूरी होता है.
ठीक.
ट्रीटमेंट इतना बड़ा इशू नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो रिलैप्स रेट है, रिलैप्स रेट जो है वो 60-90% ग्लोबली है. और फैमिली को जब तक एजुकेट ना किया जाए, जब तक फैमिली को शामिल ना किया जाए तो सिर्फ क्लाइंट को जो है वो हर चूंकि रिलैप्सिंग डिजीज है बार बार जो है वो
यानी वो दोबारा उसकी तरफ. हाँ, आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद वो दोबारा उसको इस तरफ नशे की तरफ दोबारा भी जा सकता है अगर उसको फैमिली उस पर नजर ना रखे या उसको तवज्जो ना दे. तो बेहद शुक्रिया फरमान साहब.
फैमिली को एजुकेट करना, फैमिली को एजुकेट करना है
तो
हाउ टू प्रिवेंट द रिलैप्स एंड हाउ टू इंक्रीज द रिकवरी.
ठीक. तो ये बहुत जरूरी है कि और इसके लिए जाहिर है कि एजुकेशन के लिए कौन कौन काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट है जो ये आप ही का डिपार्टमेंट करेगा या कुछ और डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं जो इस सिलसिले में काम कर सकते हैं.
नहीं नहीं नहीं, ये तो अगर हम एंटी नारकोटिक्स पॉलिसी पढ़ लें तो इसमें स्टेक होल्डिंग होती है और स्टेक होल्डर में तकरीबन 40-50 तक जो है इसमें मिनिस्ट्रीज है, इसमें डिपार्टमेंट्स है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट है, ये सब की जो है वो सरकार जिम्मेदारी होती है.
ठीक है. हमने कोशिश की थी कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के कोई अहदेदार भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं लेकिन उनका कोई प्रोसेस इतना तवील है, उनको इजाज़त लेनी पड़ती है किसी मीडिया के प्रोग्राम में आने के लिए, तो उस वजह से हमारे साथ आज कोई शरीक नहीं हो सका. लेकिन आप खुद भी एंटी नारकोटिक्स फोर्स के इलाज और बहाली के मरकज से वाबस्ता रह चुके हैं तो कुछ बताइए कि क्या अब तक कर चुकी है, आपने क्या देखा कि इनके जो ये जो फोर्स है उसने अब तक क्या कुछ किया है इस सिलसिले में.
एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टोटल जो मैन पावर है पाकिस्तान में वो हार्डली वो 4,000 है. और जो ड्रग मैग्नीट्यूड है वो मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरवेंशंस. अब तकरीबन 80 लाख लोग जो है वो ड्रग ले रहे हैं और 80 लाख लोगों को ड्रग सप्लाई जो है वो तकरीबन लाखों की तादाद में है. ये कि एक ड्रग यूजर जो है वो सिर्फ ड्रग यूजर नहीं होता, वो ड्रग सेलर भी होता है कि वो नशा बेच के अपने नशे का खर्चा पूरा करें. आप मुझे ये बता दें कि अफगानिस्तान के साथ हमारा तकरीबन 1700 किलोमीटर बॉर्डर है. इस तरह जो है वो अगर पूरी फौज भी लगा दे तो जो है
तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी सप्लाई जो है वो दूसरे मुल्कों से भी हो रही है और ये खुद यहाँ पाकिस्तान में भी तैयार हो रही है ये ड्रग.
जाहिर है कि तो फार्मूला है ना, फार्मूला है और फार्मूला अवेलेबल है. अगर आईएस की मैं बात करूं, आईएस पहले आती थी और लाजमन जो है वो चूंकि इसमें अभी एक इकोनॉमी वो इन्वॉल्व है, पैसा है, बिजनेस है, तो पाकिस्तान में भी बन रहा होगा. जैसे कि हीरोइन जो है कहाँ बनी थी और कहाँ पहुंच गई और अब जो है वो गली गली जो है वो हीरोइन बनना लगी.
बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया.
जो आईएस है,
बेहद शुक्रिया फरमान
जो है वो मुझे
बेहद शुक्रिया फरमान साहब. हम चाहेंगे कि हमारे साथ और भी कुछ लोग माहिरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लें. हमारे साथ इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी के और आइस पर जारी एक रिसर्च के सरबरा हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम, हमारे साथ बहावलपुर से टेलीफोन पर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब.
बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम यास्मीन जमील साहिबा,
बेहद शुक्रिया. आप बताइए कि बहावलपुर के इलाके में या जो इसके इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ आइस के फैलाव की क्या सूरत हाल है और इसकी रोकथाम के लिए वहाँ तालीमी इदारे क्या कुछ कर रहे हैं और वहाँ सरकारी तौर पर क्या कुछ हो रहा है?
जी, यहाँ पर निस्बतन जो है इसके केसेस जो है वो कम रिपोर्ट हो रहे हैं. खैबर पख्तूनख्वा में शायद इसकी रेशो जो है वो ज्यादा है और हाल ही में कुछ हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे और हमारे शहर में भी कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स में ये इशू देखने में आया. तो यूनिवर्सिटी अपने तौर पर जो है वो इकदाम कर रही है मगर सरकारी सतह पर कोई खातिर खा ऐसे कोई स्टेप्स अभी तक नहीं देखने में आए.
ठीक, तो आप खुद भी एक आइस पर एक रिसर्च के निगरान हैं, तो कुछ बताइए कि उस रिसर्च को कहाँ तक ले जाया गया है और उस पर क्या क्या रिसर्च हो रही है?
जी हाँ, मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ कुछ पीएचडी लेवल के प्रोजेक्ट्स को जिनमें हम बिलखसूस जो है वो आइस का जो बढ़ता हुआ रुझान है उस पर काम कर रहे हैं. हमारी जो फाइंडिंग्स हैं या हमारी अब तक की जो शेयरेबल चीजें हैं उनमें मैं एक तो बचाव के हवाले से कुछ बात करना चाहूंगा
जी जी.
और पेरेंट्स को कुछ ऐसी जो हैंड्स ऑन टिप्स हैं वो देना चाहूंगा कि जिसके हवाले से वो अपने बच्चों के जागने सोने के औकात जो हैं उनको देखें, क्योंकि आइस के जो बच्चे हैं, आइस यूजर्स जो हैं, उनके सोने जागने के औकात में जो है बदलाव आ जाता है और उनके बोलने के पैटर्न में तब्दीली आती है. कुछ बच्चे हकलाने लगते हैं या उनके जबड़े की गैर मामूली हरकत जो है वो देखने में आती है और ऐसे बच्चों की जो आंखें हैं वो साकेत सी या फ्लैट आईज जो है वो देखने में आती हैं. और यूजुअली ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा प्राइवेसी रिक्वायर कर रहे होते हैं या उनकी जनरल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गिर रही होती है. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा कि हम उन बच्चों की जो एनर्जी है उसको सही सेंट में लगाने के लिए उनको स्पोर्ट्स के साथ जोड़ सकते हैं, उनको ग्राउंड से जोड़ सकते हैं. ऐसे बच्चों को अपनी नजरों के सामने जो है हम रख सकते हैं, आर्ट की तरफ इनकी रगबत दिलाई जा सकती है. हम इसके लिए कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं. और एक इंटरेस्टिंग एक दो चीजें थी जो मैं जरूर यहाँ शेयर करना चाहूंगा. जब हमने एक दो बच्चों के जो आई से देखे उनके इंटरव्यूज किए तो दो चीजें जो है वो बड़ी सामने आई. एक तो वालदैन की तरफ से गैर जरूरी तौर पर जो ज्यादा नंबरों के असूल का मुतालबा है ये भी इनको जो है वो इस तरफ लेकर गया. और दूसरा स्टूडेंट्स की वो क्लास जो प्रोक्रास्टिनेटर्स हैं, जो आज का काम कल पर छोड़ने के आदि हैं और जब एग्जाम खासतौर पर सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम थर पर आ जाते हैं तो फिर उनको शायद रातों को जागने की जरूरत महसूस होती है. तो ये ड्रग जैसा कि आप जानती हैं कि
अलर्ट कर देती है, अलर्ट कर देती है. तो ये झांसे में और ऐसे हाँ और ऐसे में फायदा उठाते हैं वो लोग जो ड्रग्स बेचते हैं और उन बच्चों को पता भी नहीं लगता.
हाँ जी,
और वो उसके आदि हो जाते हैं।
तो प्रोक्रास्टिनेटर्स बच्चे जो हैं उनका कंपैरेटिवली ज्यादा शिकार हो रहे हैं।
ठीक, तो
एक और वजह जो सामने आई थी यहाँ पर वो ये थी कि इट्स अ मॉडर्न ड्रग ऑफ द चॉइस। कुछ बच्चों ने ये कहा कि हमने कुछ मगरबी या यूरोपियन फिल्में देखी हैं, कुछ ड्रामा सीक्वल्स हमने देखे हैं। तो एक बच्चे ने पर्टिकुलरली ब्यूटीफुल बॉय एक मूवी का जिक्र किया, कुछ ब्रेकिंग बैड का जिक्र किया कि वहां से हमने इंस्पायर होके तो जो है इसकी तरफ हमने ये काम शुरू किया है।
ठीक,
तो अल्टीमेटली जो है वो अब उनमें पैरानॉय और सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो रही थी जब हमारे पास वो लोग आए। तो ये है एक ब्रीफ सी पिक्चर जो रिसर्च के नतीजे मेरे
आपके सामने आई है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर सलीम साहब, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ इस वक्त आइस पर रिसर्च के एक स्कॉलर हैं आफ्ताब हुसैन, जो इस्लामाबाद के 3 मराकज में आइस के इलाज पर रिसर्च कर रहे हैं और एक सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब हुसैन साहब। आफ्ताब हुसैन साहब हमारे साथ जी। आफ्ताब साहब आप बताइए कि आपने आप किस मौजू पर आप रिसर्च कर रहे हैं, आइस के किस एस्पेक्ट पर, इलाज पर कर रहे हैं या उसकी प्रिवेंशन पर कर रहे हैं, और अब तक आपकी रिसर्च के क्या नतीजे सामने आए?
ट्रीटमेंट पे कर रहा हूँ
जी। जी
बेसिकली मेरा जो रिसर्च का है जो लोग एडिक्टेड हैं आइस के स्पेशली, और उसमें रिलैप्स के हवाले से प्रिवेंशन की जो स्ट्रेटेजीज है वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रिवेंशन के यूज हो रहे हैं, लेकिन माइंडफुलनेस पे जो मेरा स्पेशली काम है आइस के पेशेंट है वो माइंडफुलनेस पे, माइंडफुलनेस बेस्ड रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी। ये दुनिया भर में तो ये तरीका इलाज 2011 से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई भी थेरेपी स्टार्ट नहीं हुई स्पेशली एडिक्शन के हवाले से। तो ये अपनी नोयत का पहला काम है जिसमें मैंने तकरीबन कोई 90 के करीब आइस के जो पेशेंट्स हैं उनको लिया है और उनको जो है वो थेरेपी दी जा रही है। ये तकरीबन 8 हफ्तों का प्रोग्राम होता है थेरेपी का, 8 हफ्तों का। फिर उसमें उसमें 8 सेशन है ना, वीक सेशन होते हैं और हर सेशन का एक अपना एक मखसूस प्रोटोकॉल है।
ठीक,
तो एक स्टैंडर्ड ये है जिसके मुताबिक हम पेशेंट्स को अपने सेशन का असर देते हैं और उनका फीडबैक भी लिया जाता है। और ये जो तरीका इलाज है ये दुनिया भर में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और इससे जो रिलैप्स का रेशो है वो कंपैरेटिवली दूसरे तरीका इलाज की निस्बत बहुत कम है। अब इसमें ये होता है कि ये तरीका इलाज हम कॉम्बिनेशन के साथ भी कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस के साथ दूसरी जो टेक्निक है उनको भी इस्तेमाल करके, जैसे 12 स्टेप का प्रोग्राम है उसके साथ इस्तेमाल, या स्पिरिचुअल थेरेपी का है प्रोग्राम उसके साथ ही करके तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट लिए जा सकते हैं।
तो
एक चीज जो मेरी फाइंडिंग में आई कि आइस के पेशेंट में इम्पल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्द डिसीजन लेने के जो है ये लोग आदि होते हैं, कि इसी वजह से हमने देखा कि सुसाइड का रेट जो है वो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा है।
तो उसके लिए फिर क्या आप लोग ये सारी मुख्तलिफ थेरेपीज आप दे रहे हैं जो इसका, और कितने अरसे, यानी ये थेरेपीज जो है ये क्या मुद्दत इलाज की या प्रिवेंशन की कम कर देती हैं दोबारा वापस आने की?
जी बिल्कुल, इसकी मुद्दत को कम कर देती हैं और पेशेंट को अपने बारे में अवेयरनेस हो जाती है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि अपनी जात के हवाले से मुकम्मल आगाही हो जाती है, कि मिसाल के तौर पर जब वो यहाँ से बाहर इन ट्रीटमेंट के बाद बाहर जाता है तो उसको बहुत सारी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो हम इस थेरेपी में पेशेंट्स को ये ट्रेनिंग देते हैं कि वो किस तरह से अपने इर्द गिर्द के एनवायरमेंट से या अपनी जात के हवाले से अवेयर हों, और ताकि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल या उनका जो सेल्फ जो कंट्रोल सिस्टम है वो ज्यादा मजबूत हो और अपनी चीजों को वो बेहतर तौर पे अपनी इंपल्सिविटी पे काबू पा सकें, अपनी क्रेविंग पे काबू पा सकें, क्योंकि ये बेसिक मसाइल हैं जो पेशेंट जब ट्रीटमेंट के बाद जाता है तो उसको सामना करना पड़ता है। तो बाकी थेरेपीज में इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं है जितने कि इसमें है।
बेहद शुक्रिया आफ्ताब हुसैन साहब, आप हमारे साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया तो ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं एक बहुत अहम मसले पर, और वो है पाकिस्तान के नौजवानों में बढ़ता हुआ आइस का इस्तेमाल। आइस बर्फ नहीं है बल्कि एक नशा है, जो केमिकल से तैयार होने वाला एक नशा है, जो कहते हैं कि बाज़ औक़ात بازوقات کیا بلکہ ہیروئن اور دوسرے نشوں سے بھی بہت زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ مہلک ہے, اور اس کی چنگل میں بہت سے نوجوان جو ہیں بڑی تیزی سے آ رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ ابھی تک جو ماہرین نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ حافظہ بہتر, وقتی طور پر حافظہ بہتر لگتا ہے, کنسنٹریشن بہتر ہوتی ہے, تو جو اس کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کوشش میں ان کو بیچ دیتے ہیں, ڈرگس عادی بنا دیتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہتر ہوگا, آپ کے ریکارڈ, تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا ہو جائے گا, آپ کے امتحان کی تیاری بہت اچھی ہوگی, تو وہ بچے اس میں پھنس رہے ہیں, اور اسکولوں تک کے بچوں میں یہ بیماری, یہ جو نشہ ہے یہ تقسیم کیا جا رہا ہے, یہ بہت خطرناک صورت حال ہے, اور اس کا تدارک کیسے ہو اسی پر بات کر رہے ہیں ہم آج. اور ہمارے ساتھ ابھی تک بہت سے ماہرین گفتگو کر چکے ہیں, ڈاکٹر کین پال داس کراچی سے ہمارے ساتھ تھے اب سے کچھ دیر پہلے, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اصغر علی شاہ صاحب موجود ہیں, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے سائیکو تھراپسٹ ہیں, اپلائی سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جواد محمد شجاعت موجود ہیں جو کولمبو پلان جو اقوام متحدہ کا اس کے ایک نیشنل ٹرینر ہیں, تو ان کو پہلے گفتگو میں شامل کر لیں ایک بار پھر. ڈاکٹر جواد محمد شجاعت صاحب, کچھ بتائیے کہ کولمبو پلان کے تحت اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے, خاص طور پر آئس کے نشے کے عادی افراد کے لیے؟
دیکھیں, یہ اس کا کولمبو پلان کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنلز ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو ٹریننگز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں, اور انہیں وہ تمام پروٹوکول مہیا ہوں جو انٹرنیشنلی کسی بھی ٹریٹمنٹ فیسلٹی کو چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مین پرابلم ہے کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی لائسنسنگ اتھارٹی موجود نہیں ہے, تو یہاں پہ جس بھی بندے کا دل کرتا ہے وہ اٹھ کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ سینٹر بنا لیتا ہے. تو اس کے لیے کولمبو پلان جو ہے وہ فنڈنگ دے رہا ہے, وہ لوگوں کو مور دین 100 پروفیشنلز ابھی تک کولمبو پلان کے پلیٹ فارم سے جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو پروفیشنلز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں, اور فردر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے بیسک اور ایڈوانس لیولز ہیں ان ٹریننگ بھی یہاں پہ کروائی جائیں. تو یہ تمام جو پروفیشنلز ہیں یہ انٹرنیشنل ٹریننگز کے بعد اس پرابلم کے اوپر جو ہے یہ بہت حد تک قابو پا سکیں گے.
ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کتنے ٹرینرز کو تیار کیا جا چکا ہے جو اس مرض سے نمٹ سکے؟
مور دین 100.
اچھا, تو مور دین, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. اور یہ آئندہ کے کیا پروگرامز ہیں کہ کتنے مزید ٹرینرز کو جو ہے تیار کیا جائے گا؟
تقریباً 400 کے قریب جو ہے ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 400 کے قریب جو پروفیشنلز ہیں وہ تیار کیے جائیں. اور اب کولمبو پلان کے ساتھ آئی سیف پاکستان ہے, ان کے یہاں کے چیئرمین ہیں, ہمارے ڈائریکٹر ہیں بشیر احمد ناز صاحب, وہ اسپیشل کنسرن کے ساتھ اس کے لیے فنڈنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پروفیشنلز کو ود آؤٹ اینی کاسٹ یہ ٹریننگ اور یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں.
ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جس حساب سے یہ مرض بڑھ رہا, یہ نشہ بڑھ رہا ہے, اس حساب سے 400 ٹرینرز تو کیا کر سکیں گے؟ یہ تو کوئی ایسی,
دیکھیں اس کے اندر جو بیسک ان کا گول ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرینرز ہیں وہ آگے لوگوں کو مزید ٹرینڈ کریں.
اچھا,
مطلب یہ ایک چین بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایجوکیشنل چین ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ ایڈکشن ٹریٹمنٹ کی پراپر جو ہے کریڈینشل اویلیبل ہیں, ایک انٹرنیشنل پینل ہے جہاں پہ ان کی لائسنسنگ ہو سکتی ہے. تو ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ نارکوٹک فورس جو ہے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کر دے کہ جب تک کسی فیسلٹی میں کوئی انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ٹریٹمنٹ پرسن موجود نہیں ہوگا تو اس فیسلٹی کو وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کے اندر ان ہو.
ٹھیک, تو بے شکریہ. اب گفتگو میں ہم شامل کریں گے ایک ایسے نوجوان کو جو نول یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت ماسٹرز کے, اور انہوں نے ایک نشے سے اپنی جان چھڑائی اور اب ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر یہ موجود ہیں, عبداللہ یوسف زئی ان کا نام ہے. السلام علیکم عبداللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. हाँ नहीं, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अभी अब्दुल्ला यूसुफ जई से वो रब्ता उनका मुनक़ता हो गया, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर असगर अली शाह साहब, आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। कुछ आप बताइए कि कुछ तो आपने रोशनी डाली थी कि इसका इलाज जो अमराज नफसियाती अमराज हो जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके इलाज की क्या सूरत हाल है जो आइस के मरीज, आइस के नशे के खासतौर पर जो मरीज हैं।
मेरे ख्याल जो इस वक्त मौजूद चल रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और जवाब साहब ने जो इशारा दिया है क्लिनिक की तरफ, मैं इसको थोड़ी सी ये बात करना चाहूँगा कि ठीक है कोलंबो प्लान और जो बहुत अच्छी प्रोग्राम हैं और यकीन इससे इलाज और उसमें बहुत बेहतरी आएगी, लेकिन इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में और हमारे जो कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर है, क्रॉस कल्चरल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि इंटरनेशनल मॉडल है ट्रीटमेंट के वो उस तरह से उसको मीट नहीं कर पा रहे, उस रिक्वायरमेंट को नहीं मीट कर पा रहे जो हमारे क्रॉस कल्चरल इश्यूज को एड्रेस करे।
ठीक,
क्योंकि हमारे यहाँ जो आप देखेंगे जिस कल्चर से लोग आ रहे हैं उनके उनके रिलीजियस कोड्स हैं, उनके इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी ट्रेडिशन हैं, उनके बहुत सारे जैसे ग्रुप प्रेशर की बात हो रही थी कि ये इसकी ज़्यादा वजह है, तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक ऐसा इंडिजिनस ट्रीटमेंट मॉडल हमें चाहिए जो यही ट्रेनर जो हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीख के आते हैं, अगर ये थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें कि हमारे इंडिजिनस अप्रोचेस जो हैं काउंसलिंग के हवाले से या साइकोथेरेपी के हवाले से अगर उसको इंट्रोड्यूस किया जाए और उस पर थोड़ी सी रिसर्च की जाए तो तब कहीं जाके हम इस पर काबू पा सकेंगे। अदरवाइज मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि सन 2000 में एक प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया था कि जितने भी ट्रीटमेंट मॉडल्स थे पाकिस्तान में जो ड्रग एडिक्शन के लिए काम कर रहे थे, तो उसकी एक रिसर्च का आया था, एक प्रोजेक्ट आया था जिसका मैं कोऑर्डिनेटर था, सुपरवाइजर भी था, मैंने उसको सुपरवाइज किया था। लेकिन उसमें हमें लगा ये था कि वो सारे जो मॉडल हैं वो बहुत सारी उसमें ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्चर के मुताबिक,
तो आप ये कह रहे हैं कि उसके इसके लिए जरूरी है कि कल्चर को भी सामने रखा जाए, इंटरनेशनल जो अप्रोचेज हैं उनको उनको लाते हुए
रखा जाए, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी लिया जाए, लेकिन जिन लोगों का अब ड्रग एडिक्शन में एक्सपीरियंस हो गया है इतने अरसे से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अगर मिल के बैठे और अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे उस मॉडल को थोड़ा सा मजीद मॉडल,
तो उन्हें इकट्ठा कौन करेगा, उन्हें कौन बिठाएगा इकट्ठा कि वो मिलकर मजबूत कोशिशें करें। गवर्नमेंट का इस सिलसिले में क्या रोल होना चाहिए, मीडिया का इस सिलसिले में क्या रोल होना चाहिए?
गवर्नमेंट का रोल कोई खास हमें नजर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, इसलिए हमने आज तक ऐसा कोई अप्रोच ही नहीं देखी कि हमें किसी ने अप्रोच किया हो कि आए थोड़ा सा हमारे साथ कोई हेल्प करें। और ये फरमान साहब है, जवाद है, आफ्ताब है, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और इनकी एफर्ट जो है वो
तो,
माशाल्लाह काफी
ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर और दूसरे एनजीओ लेवल पर हो रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत की कोशिशें इस जानब भी बहुत कम है, उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी,
और फिर जो री एजुकेशन की जब हम बात करते हैं या इसकी थोड़ी सी, तो वो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जो अवेयरनेस रेजिंग, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है,
तो आप सब लोग
बिल्कुल इग्नोर है, कोई ऐसा अवेयरनेस का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल कॉलेज लेवल पे जिससे बच्चों में थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि ये चीज कितनी खतरनाक है, कितनी नुकसानदेह है।
ठीक,
तो सब पता चलता है जब ये चीज एकदम से, और हमारे यहाँ भी मेरा ख्याल है इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल हैं, कैद आजम यूनिवर्सिटी के हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हैं, तो यहाँ पे इस तरह के केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं।
ठीक है, और आप खुद
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जी
आप खुद, क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद हैं, तो जाहिर है कि आपको भी इस सिलसिले में कुछ कदम उठाना चाहिए, और तमाम यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा को, ज़रूरी नहीं कि कोई खास डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इसी तरह तवज्जो दे, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो सारे स्टूडेंट्स में फैल रहा है, ये कतअ नज़र इसके कि वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या मेडिकल स्टूडेंट है, जो भी है, तो तमाम खासतौर पर असातिज़ा की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और इंतज़ामिया को इस तरफ लाएँ कि इसके लिए कुछ किया जाए। और ज़ाहिर है कि जी आप कीजिए,
एक नफसियाती क्लिनिक के नाम से हमने एक अदारा यहाँ खोला है अपने डिपार्टमेंट में, जो हमारा मेडिकल सेंटर है उसके अंदर ये मौजूद है और वो डेली एक हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी वहाँ बैठे होते हैं, एक कोऑर्डिनेटर भी बैठा होता है और जो भी केस इस तरह का रिपोर्ट होता है तो उसकी पूरी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कोई आया इसमें कोई ऐसी।
तो आप ये कह रहे हैं कि तो ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद है लेकिन स्पेसिफिकली इस वक्त जरूरत है आईस पर तवज्जो देने की, तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम सबसे और आप भी जाहिर है ये दरख्वास्त करेंगे कि इस स्पेसिफिकली इस मसले की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमने भी कहा था कि एक आज हमारे प्रोग्राम में अब्दुल्ला यूसुफ जई मौजूद हैं जो हीरोइन जैसे नशे से अपना पीछा छुड़ा चुके हैं और बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि किन मराहल से गुजरे और क्या होना चाहिए अगर कोई खासतौर पर अगर आइस के नशे का शिकार हो जाता है तो कैसे उसे छुटकारा हासिल करे। जी अब्दुल्ला यूसुफ जई साहब इस्लामाबाद से आप हमारे टेलीफोन पर मौजूद हैं। जी
वालेकुम साहब, जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर सकूं।
जी जी,
मैं एक्चुअली हीरोइन का एडिक्ट था जब मैं इस्लामाबाद में था अपनी डिग्री स्टडी में, एडिक्ट हो गया था और अपने फ्रेंड की कंपनी में व्यस्त हुए सिगरेट और हशीश के होते होते मैं हीरोइन का एडिक्ट हो गया और फिर हीरोइन के एडिक्शन के दौरान मैंने बहुत सफर किया। समझते हैं कि मैं क्योंकि एक जॉब कर रहा था इस वजह से मेरे एक्सपेंडिचर पूरे हो रहे थे क्योंकि मैं क्योंकि पार्ट टाइम स्टूडेंट था और साथ साथ मैं एज ए रिसर्च असिस्टेंट जॉब भी कर रहा था, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सकूँ हीरोइन के, क्योंकि ये हीरोइन या आइस हो।
ठीक, तो आप ये कह रहे हैं ब्रीफली बताइए अब्दुल्ला यूसुफ जई साहब कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर हॉस्टलों में तालीमी इदारों में आइस की तरफ या किसी भी नशे की तरफ रागिब होते हैं या माइल होते हैं।
एक्चुअली जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है और यूनिवर्सिटीज की बात है यहाँ पर ये कुछ स्ट्रेस की वजह से या और किसी प्रॉब्लम की वजह से वो उस तरफ रागिब नहीं होते। ये फ्रेंडशिप्स और नेटवर्क जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के आपस में बने होते हैं, कोई एक स्टूडेंट इसमें लगा होता है और उसके साथ और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और ख़ासकर ये हॉस्टल्स के अंदर ये चीज़ें एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ और तीसरे से चौथे चौथे की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। तो चिल के लिए भी इसको यूज करते हैं, पार्टी के लिए भी यूज करते हैं और गैदरिंग होती है गैदरिंग में इसको यूज किया जाता है और उसको है कभी कभार इसको एज अ सेंस ऑफ प्राइड के तौर पर भी यूज किया जाता है कि मैं लाइक आई एम यूजिंग ड्रग्स, आई एम कि मैं नशे में हूँ, मैं चिल्ड हूँ, इस तरह की चीजें भी होती।
ठीक है, तो क्या तो असर
इसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक्सट्रीम होते हैं उसके पास अनलिमिटेड पॉकेट मनी होती है और वो जब एक्सट्रीम एडिक्ट हो जाता है नशे का तो वो अपनी पॉकेट मनी में ये इसका ये वो अपनी एडिक्शन को पूरा नहीं कर सकता, तो वो फिर क्या करता है कि वो खुद इसको सेल करना शुरू कर देता है, वो बाहर से लाता है और जो उसके नेटवर्क में जो लड़के होते हैं जो ऑलरेडी एडिक्ट होते हैं उनको भी सेल करते हैं और उसकी कोशिश ये होती है कि और स्टूडेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएं और वो मुख्तलिफ तरीकों से उनको अपने नेटवर्क में साथ ले आते हैं और उनको जो है तो इस हीरोइन के नशे का आदि बना दे। इससे पहले मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में था, वहां जब मैं आनल कर रहा था पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर सिचुएशन ये है कि वहां पर तो हॉस्टल के रूम में आपको ड्रग प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल के रूम के अंदर पहुंचती है वो ड्रग, किसी भी किस्म की ड्रग हो वो एक फोन कार्ड पर पहुंच जाती है। और इस्लामाबाद की जहाँ तक सिचुएशन है, इस्लामाबाद में जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस है, सर्वेलेंस है वहाँ पर इस तरह।
तो आप ये कह रहे हैं कि तालीमी इदारों में बड़ी ये आराम से दस्तियाब हो रही है और लेकिन ये हैरत की बात है कि तालीमी इदारों के जो अरबाब इख्तदार हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, उन्हें यकीनन देनी चाहिए। और तो इस सिलसिले में क्या ऐसा नहीं होता कि वो उनको खबर ही नहीं होती कि वो इग्नोर करते हैं जो इदारे के अरबाब इख्तदार हैं?
अगर आप पेशावर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल खासकर न्यू हॉस्टल ए ब्लॉक बी ब्लॉक में आप इंटर होंगे तो आपको शीश की बू आना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर एक वार्डन है तो उसको वो बू नहीं आ रही,
तो तो
वो भी तो उसको स्मेल कर सकता है ना.
अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा किसी प्रोग्राम में इस वक्त क्योंकि हमारे साथ कोई पेशावर यूनिवर्सिटी का कोई कोई प्रोफेसर या कोई मौजूद नहीं है अहदेदार, तो हम इस पर बात बाद में करेंगे. ये बताइए कि ब्रीफली जल्दी से बताइए कि रिहैब मराकज का क्या हाल है, एक मिनट में आप बात खत्म कीजिए ताकि हम गुफ्तगू को समेटेंगे. जी
जी आप क्वेश्चन रिपीट कीजिए.
मैंने कहा कि रिहैब मराकज जो है वो आइस के इलाज के लिए क्या कुछ कर रहे हैं.
रिहैब के विद सम एक्सेप्शन, रिहैब के जो मैं दो रिहैब से होकर आया हूँ और जो मैं रिहैब से होकर आया हूँ मेरी सिचुएशन पहले से ज्यादा खराब हो गई थी. फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट एड जैसे ही मेरी रिहैब से बाहर आया.
क्या वजह?
मैंने पहले दिन से
वजह क्या थी
दोबारा वो जो है तो जी
वजह क्या थी क्यों खराब हो गई सर?
वजह ये थी कि रिहैब के अंदर सिर्फ डिटॉक्स का काम किया जाता है. ठीक है, वो लाइक अ प्रिजन होती है. फर्स्ट रिहैब में जब मैं गया वहां पर मैंने 45 डेज गुजारे और उन 45 दिन में मैंने वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं देखी, वहां पर मैंने आसमान को नहीं देखा.
तो इसका मतलब ये, लेकिन जाहिर है कि सारे यूसुफ जई साहब यकीनन कुछ रिहैब मराकज खराब भी होंगे लेकिन जाहिर है कि सारे रिहैब मराकज ऐसे नहीं होते. आपका तजर्बा ये रहा और फिर आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपकी हेल्प की तो फिर आप दोबारा अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो सके और अब माशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी सही गुजार रहे हैं. बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ जई साहब. प्रोग्राम को समेटने का वक्त हो गया, हम एक बार फिर गुफ्तगू में शामिल करेंगे डॉक्टर असगर अली शाह साहब. असगर अली शाह साहब इस वक्त जो पाकिस्तान में और दुनिया भर में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको खासतौर पर नौजवानों को कुछ मशवरा दीजिए. एक एक मिनट आपके पास है, आप मशवरा दे दीजिए कि आइस के मर्ज से या आइस के नशे से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं. जी डॉक्टर असगर अली शाह साहब.
मेरे ख्याल है ये ग्रुप प्रेशर का बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर सामने आया है कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हैं या दूसरे लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं. तो मेरे ख्याल है पेरेंट्स को भी ये बात करनी चाहिए और बच्चों को भी थोड़ा सा, एक जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं उनको भी एक दूसरे से यही कम्युनिकेट करना चाहिए कि ऐसे लोगों से बच के रहें. और सबसे बड़ी बात मेरा ख्याल है ये है कि अगर उनको कोई ऐसा कल्प्रेट नजर आए तो उसको फौरन आइडेंटिफाई करना चाहिए, किसी इंतजामिया को रिपोर्ट करना चाहिए या किसी पुलिस को बताना चाहिए या कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि इसको किसी तरह से छोटा सा कोई इस पर कंट्रोल किया जा सके. अगर इसमें अवेयरनेस और ये ना किया गया तो ये
बहुत मुश्किल हो जाएगा. जी ठीक, प्रोफेसर डॉक्टर जवाद मोहम्मद शुजात आप एक मिनट में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जवाद साहब?
देखिए ट्रीटमेंट सेंटर्स के हवाले से जो हमारे मेहमान थे यूनिवर्सिटी के जो रिकवरिंग एडिक्ट हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वहाँ पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, वो जस्ट एक प्रिजन थी.
ठीक,
चंद मैं पूरे पाकिस्तान में चंद सेंटर्स को जानता हूँ जिसमें मैट्रिक्स कराची है, साइकेड है इस्लामाबाद से, इसी तरह ओखला सेंटर है और गोदा में एक अजम एडिक्शन एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट सेंटर है. वो अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं. असल में पेरेंट्स का काम है कि जब वो किसी रिहैब सेंटर में जाएं तो सबसे पहले ये चेक करें कि क्या वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज मौजूद है.
ठीक, तो उसके बगैर ये बड़ा जरूरी है कि पेरेंट्स तवज्जो दें जब. बिल्कुल, ये आपका पॉइंट आ गया. और फरमान अली साहब आप जल्दी से बताइए, एक मिनट आपके पास है, कि क्या करना चाहिए इस वक्त जो लोग इस नशे की तरफ जा रहे हैं उनको कैसे बचाएं?
सबसे पहले जो इस नशे की तरफ आ चुके हैं वो इलाज की तरफ जाएं और जो लोग जा सकते हैं वो उनकी प्रिवेंशन हो. स्पेशली जो है पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को समझे, बच्चों को सुने और उन पे ऐसी मॉनिटरिंग रखें कि वो हेल्पफुल हो, सपोर्टिंग हो. उसको ज्यादा जो है वो काम पे न लगाएं. इस तरह जो है वो कॉलेज स्टूडेंट जो टीचिंग इदारे हैं वहाँ भी टीचर्स को चाहिए कि वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रखें कि बच्चा जो है वो बार बार अगर एक जो है बिहेवियर उसका चेंज हो रहा है
तो उस पर नजर रखें. डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब
वो उन पर नजर रखें.
ठीक, इस्लामी यूनिवर्सिटी भालपुर के डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब आप क्या कहेंगे?
जी यास्मीन, मैं जैसे कि पहले मैंने अर्ज की थी कि बचाव के हवाले से बच्चों की जो पॉजिटिव चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी है मैं उसी पर दोबारा फोकस करूंगा.
ठीक,
कि हमें इन बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागब करना होगा, इनको आर्ट्स के साथ जोड़ना होगा और नो डाउट के जैसे बाकी सीनियर्स ने बात की है कि पेरेंट्स का इसमें डेफिनेटली एक रोल है. اور آئی ڈو اگری.
بےحد شکریہ, بےحد شکریہ.
اور اگر گھر میں آتے ہیں تو بھی پیرنٹس کو جو ہے وہ کنٹرول.
بےحد شکریہ, بے شکریہ. آج کے پروگرام کو سمیٹنے کا وقت ہوا. آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم نے گفتگو کی ایک مہلک نشے آئس کے بارے میں جو بڑی تیزی سے پاکستان کے نوجوانوں میں پھیل رہا ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی کے سیکرٹری ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر کھین پال داس, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے کلینکل سائیکالوجسٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اصغر علی شاہ, اور پروفیسر ڈاکٹر جواد محمد شجاعت جو اقوام متحدہ کے کولمبو پلان کے ایک نیشنل ٹرینر ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے فرمان علی جو اسلام آباد کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے علاج اور بحالی کے ایک سابق پروگرام مینیجر ہیں. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر محمد سلیم, اور ہمارے ساتھ تھے نمل کے یوسف زئی. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. داعش کے رہنما ابوبکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد صدر ٹرمپ نے اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا تھا. گزشتہ روز افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ داعش کو شکست دے دی گئی ہے, اور اس گروہ کے 600 جنگجوؤں نے اپنے آپ کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے. لیکن کچھ امریکی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کا خطرہ اب بھی موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں داعش کے القاعدہ اور طالبان کے ساتھ کسی باقاعدہ اتحاد کے امکانات کم ہیں, لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی کی کاروائیوں میں کسی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کریں. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں ندیم یعقوب سے.
گزشتہ ماہ امریکی فورسز نے داعش کے سربراہ کو ہلاک کر دیا. القاعدہ کا زور ٹوٹنے کے بعد حالیہ کچھ برسوں میں البغدادی کی تنظیم عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن کر ابری ہے. ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے باوجود کچھ تجزیہ کار دولت اسلامیہ کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہیں.
کسی کے لیے بھی یہ کہنا کہ ہم نے شام اور عراق میں داعش کو شکست دے دی ہے غلط ہوگا. ہم نے اتحادیوں کی مدد سے گزشتہ 5 برسوں میں شام اور عراق میں داعش کو زبردست نقصان پہنچایا ہے, مگر اس کے ہزاروں جنگجو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. القاعدہ جب دنیا کی خطرناک دہشت گرد تنظیم تصور کی جاتی تھی, اس کے مقابلے میں جب سے داعش قائم ہوئی ہے اس کا عالمی نیٹورک القاعدہ سے کہیں زیادہ منظم اور مؤثر ہے. دولت اسلامیہ جس طرح اپنے سفر پر گامزن ہے, یہ عالمی امن کے لیے انتہائی خطرناک ہے.
تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں خلافت کے خاتمے کے بعد ایک خطہ جہاں داعش زیادہ مضبوط اور مؤثر ہو سکتی ہے وہ افغانستان ہے. ان خدشات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ طالبان سے منسلک وہ عناصر جو افغان امن مذاکرات سے ناخوش ہیں وہ دولت اسلامیہ سے مل سکتے ہیں.
خطے میں داعش خراسان سے نمٹنا بہت اہم ہے. ان دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک حل تو ہے نہیں, اس لیے ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ان پر دباؤ جاری رکھنا چاہیے, چاہے یہ شام یا عراق میں ہو یا پھر افغانستان میں. داعش خراسان ایک خطرہ ہے اور ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے. یہ لوگ دیہی علاقوں میں محرومی کا شکار آبادی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں داعش کے دوبارہ متحد اور مضبوط ہونے پر فکر مند ہوں.
داعش, القاعدہ اور طالبان کے علاوہ بھی کئی عسکریت پسند گروہ افغانستان اور پاکستان میں متحرک ہیں, جس کی وجہ سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے لیے وہاں اسلامی عسکریت پسندوں کو ریکروٹ کرنا قدرے آسان ہے. نظریاتی طور پر مختلف ہونے کے باوجود کیا القاعدہ اور داعش کے درمیان کسی طرح کا اتحاد ممکن ہے؟
کریشن آف سم کائنڈ آف اسٹریٹیجک,
میرا خیال ہے کہ اسٹریٹیجکلی القاعدہ اور داعش کے درمیان اتحاد ناممکن لگتا ہے, کیونکہ ان دونوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے. تاہم عسکری لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کو گنجائش دے سکتے ہیں, یا کم از کم ایک دوسرے کے راستے میں حائل نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں, یا محدود سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کر سکتے ہیں. دنیا کے کچھ علاقوں میں ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے جو سب کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے.
اسی لیے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سابق سربراہ جنرل جوزف ووٹیل سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن مذاکرات اور مصالحتی عمل کو آگے بڑھنا چاہیے تاکہ داعش اور دوسرے دہشت گرد گروہ خطے کو مزید غیر مستحکم نہ کر سکے. ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.